Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Are thodi si jo andar hawa hai, mal mutra ke gas se taiyar hua, वो थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो नाक बंद करने के लिए परेशानी होती है, उसके बगल में बैठना मुश्किल होता है, होता है कि नहीं? थोड़ी सी हवा बाहर निकली, अपान वायु, उसके बगल में बैठना मुश्किल होता है, 10 मिनट के, 2 मिनट के लिए भी। अब वहां 10 महीना बैठना पड़ा कि नहीं, बोलो, उसी गैस देख लो, कम कष्ट का अनुभव हुआ। सारा कारण क्या है? आदो कर्म प्रसंग। पहली बार जन्म, पहले इससे पहले जन्म में आपके बनाए हुए, आपके दिए हुए सारे साधनों का मैं उपभोग करता रहा, लेकिन आपके प्रणाम नहीं किया, आपका स्मरण नहीं किया, उस अपराध का फल यह हुआ कि 10 महीने तक मां के गर्भ में बंद होना पड़ा और कोई आनंद नहीं आया, कष्ट ही कष्ट, वो वेदना, वो पीड़ा, वो छटपटाहट। यद्यत वही तत्र दुखम, उस समय में जो दुख हुआ, शक्यते के न वक्तुम, उस दुख को मैं कैसे वर्णन करूं? अनुभव तो हो रहा है लेकिन मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, अनुभव किया मैंने। अतः हे महाराज, हे परमात्मा, अभी भी फिर जन्म लेकर आ गया और वही काम अभी भी कर रहा हूं, आपके द्वारा दिए हुए तमाम पदार्थों का मैं उपभोग कर रहा हूं, लेकिन इस बार बड़े सावधानी पूर्वक कि पहले ही आपको नमस्कार कर देता हूं भाई, हाँ, एडवांस में, कहीं ऐसा न हो कि बाद में भूल जाऊं और फिर उस वेदना में फंस जाऊं। इसलिए अभी स्मृति आ गई, अभी ख्याल आ गया, जिस समय ख्याल आ गया, जिस समय स्मरण हो गया, याद आ गया, उसी समय में काम करनी चाहिए। इसलिए मैं आज ही आपको नमस्कार करता हूं, आज से ही आप सारे अपराध को क्षमा कर देना, मैं दोबारे मां के गर्भ में जाना नहीं चाहता, बस। और आप क्षमा करोगे, अपराध तो मेरे से हुआ है, क्षण क्षण में, पल पल में अपराध हुआ है, लेकिन आप क्षमा करोगे तभी मैं इन अपराधों से मुक्त हो पाऊंगा। यदि आप क्षमा नहीं करोगे तो मुझे फिर वहीं जाना पड़ेगा, मैं अब दोबारे जाना नहीं चाहता हूं। क्षंतव्यो में पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। बोले अब तो ठीक हो गया, मां के पेट में रहते तो बहुत कष्ट हुआ था, अब पैदा हो गया तब तो आनंद हुआ होगा ना। बोले क्या आनंद होना महाराज, और मुसीबत बढ़ता गया। बाल्य दुखातिरेको मल लुलित बपुः स्तन्यपाने पिपासा बिन्मूत्र मध्य मध्ये कुतयति नितराम बिन्मूत्र मूत्र मध्ये कुतयति नितराम। देख लो, बाल्य दुखातिरेको, जब मैं मां के गर्भ से बाहर आया और दुख बढ़ गया। क्या बड़ा बेटा? मल लुलित बपू, अपने ही मलमूत्र से अपना ही शरीर लथपथ हो गया। मां को अपना घर का भी काम करना था, दूध पिला दी और दूध पिलाने के बाद वो अपने काम में लग गई, और ओठ में थोड़ा रहा हुआ दूध का अंश खाने के लिए चारों तरफ से मक्खी आ गई। और क्या करती है वो मक्खी? काटने लगती है, बैठ रही है, और कहीं उनको भ्रांति होती है कि यहां ओठ में जो दूध लगा है उसको चाटते चाटते नाक के अंदर घुस जाती है। और मेरे हाथ में वो क्षमता नहीं थी कि मुख में बैठे हुए मक्खियों को मैं उड़ाऊं। क्यों? अभी तो पैदा हुआ था, हाथ ही नहीं चल रहे थे, पीड़ा हो रही है मक्खी के, जानता हूं ये मक्खी मुझे पीड़ा दे रही है। वो तो दूध पिला दी, चली गई, थोड़ा सा यदि दूध के भी डकार आ गया और मुख से बाहर निकल गया, मक्खियों के लिए तो पार्टी हो गया, हो गया कि नहीं है? हमारे साधु के भाषा में पता है क्या बोलते हैं, भंडारा हो गया। किसके लिए? मक्खी के लिए। एक क्या हजार आ जाएंगे आप तो, वाह। कुंभ मेले में कभी गए हो तुम लोग? देखे हो? अभी आने वाला न गया हो तो अभी जनवरी से, हाँ, 14 जनवरी को पहला स्नान, मकर संक्रांति का पहला इलाहाबाद में पहला स्नान, और 10 फरवरी का दूसरा स्नान मौनी अमावस्या का, और 15 फरवरी का तीसरा मुख्य स्नान। ये तीन प्रधान स्नान है वह बसंत पंचमी का। पहला स्नान मकर संक्रांति का 14 जनवरी, दूसरा स्नान 10 फरवरी मौनी अमावस्या का, और तीसरा अंतिम स्नान है 15 फरवरी बसंत पंचमी का। आना, यदि नहीं आए हो, कभी नहीं गए हो तो जरूर आ जाओ, तब देखना साधुओं का भंडारा क्या होता है। हाँ, क्या साधु अहो, 10,000 साधु एक साथ पंक्ति में बैठे हैं, लाइन से बैठे हैं, बांट रहे हैं भोजन मिठाई सब, और खा रहे हैं लड्डू राम पूरी राम, पूरी राम खीर राम, खीर राम सब्जी राम, सब्जी राम, क्या खा रहे हैं? देख रहे हो क्या हुआ उन मक्खियों का? भंडारा शुरू हुआ। कहां? बेचारा बच्चा, मां दूध पिला के चली गई, अपच हुआ, गैस बन गया, उल्टी हो गई, बस मक्खियों के लिए भंडारा शुरू हो गया। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, सारे घर के मक्खी आ गए और भीन बनाने लगे, लेकिन न तो स्वयं खड़े होकर मुख धोने की क्षमता थी, न खुद उन मक्खियों को हटाने की क्षमता थी, लाचार था। इंद्रियों के गोलक विकसित नहीं थे, लाचार था मैं, कह नहीं पाता था, रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं था, और मेरी रोए हुए की अवस्था को मां सुनती तो दौड़कर आती, तो धो धा के फिर चली जाती, और नहीं सुना अपने काम में मस्ती तो मक्खियों के लिए फूल भंडारा। मां ने सुन लिया तो हाफ भंडारा, भंडारा ब्रेक हो गया ना, मां सुनेगी जल्दी आएगी, धो धा के साफ कर देगी, मक्खियों का फूल भंडारा नहीं हो पाएगा। देख लो, बाल्ये दुखातिरेको मललुलित वपु स्तन्यपाने पिपासा, बिन मूत्रा मध्य मध्य, और अपने ही मलमूत्र में लथपथ हो रहा है। मां को ख्याल आ गया तो उसने कपड़े बदल दी, धो धा के सफाई कर दी, ख्याल नहीं आया तो अपने पेशाब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, शरीर में लग रहा है, दुर्गंधी आ रही है, लेकिन करें क्या, लाचार, हाथ पांव विकसित नहीं है। वो कष्ट तो और मां के गर्भ से भी ज्यादा कष्टदायी हो गया है। यौवनस्तो विषय विष धरे पंचवीर मर्म संधव, जब तुम युवान हुए होगे, जवान हुए होंगे, तब तो फिर कोई कष्ट नहीं रहा होगा ना, क्योंकि उस समय हाथ भी बलवान हो गया, पांव बलवान, सारे काम तुम अपने कर सकते थे, पराधीनता की जीवन नहीं थी, तब तो आनंद रहा होगा। शंकराचार्य जी ने, महाराज ज्यों ज्यों उम्र बढ़ता गया त्यों त्यों और समस्या आ गई। यौवन हुआ तो कौन सी समस्या आ गई भाई? यौवनस्तो विषय विष पूरे पंचवीर मर्म संधव, ये शिकार खेलने वाले क्या करते हैं पता है? लोहे का तीर बनाते हैं और विष में उसको बुझाते हैं, फिर पशु को मारते हैं, और मारते ही वो तीर उसमें लगते ही उसको वो पशु मर जाता है। विषय रूपी विष से भरा हुआ पांच पांच बाण कामदेव एक साथ मारता था, और लगता कहां था बोलो? वो पांच पांच तीर एक साथ लगता था, कहां लगता था? पंचभीर मर्म संधव, शरीर में नहीं, पांव में नहीं, सिर में नहीं, छाती में नहीं, हाथ में नहीं, कहां लगता था? हृदय में, कलेजे में। हृदय में वो पांच पांच बाण एक के बाद एक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। अब ऐसे चुभता था कि उसी से पागल हो जाता था मैं। आपको कहां से स्मरण करें उस समय? महाराज बहुत कष्ट है जीवन। अब तो ठीक होगा, बूढ़ा हो गया ना, अब तो वो समस्या नहीं है ना। है शंकराचार्य, शिवजी ने पूछा होगा ना शंकराचार्य से, अब तो तू बूढ़ा हो गया, यमराज भी पांच बाण नहीं चलाएगा, उन्हें बाण रख दी होगी एक जगह, अब काम नहीं, रिटायर हो गया होगा। है अरे महाराज, पांच बाणों का आघात तो अब नहीं है, लेकिन और मुसीबत है। वार्धक्य चंद्रयाणाम विगत गतिमति, ले जी और मुसीबत हो गया। बूढ़ा होऊंगा तो इससे बचूंगा सोचा था, बूढ़ा हो गया उससे तो बच गया, और मुसीबत। वार्धक्य चंद्रयाणाम विगत गतिमति, जब बूढ़ा हुआ तो ना हाथ चलता है ना पांव चलता है, विगत गति मति, और इतने ने हाथ पांव चलता है ये नहीं, बुद्धि भी नहीं चलती है। विगत गति और विगत मति, दोनों ही अवस्था। अब लाचार हैं, क्या करें बोलो, जवानी थी तो पांच बाण लगता रहा। हे भगवान, इस प्रकार के जीवन अब मुझे नहीं चाहिए। तब क्या करोगे भाई? बोले छंदव्यो में पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे शिवा, हे महादेव, हे शंभो, यदि कोई गलती या कोई भी पुनर्जन्म के कारण रहे होंगे तो आप उन सब के क्षमा कर देना, अब हमसे वह सहा नहीं जाएगा। देखो क्या सुंदर भाव है, वही कहते हैं प्रभु त्वम। और ऐसा नहीं कि आप क्षमा करने में असमर्थ हो, आप समर्थ है, प्रभु हो। प्रभुस्त्वम दीनानाम, देखो जो काम हम कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं उसी काम को कराने के लिए और से मदद लेने की क्या जरूरत है भाई? है किसी के सहयोग लेने की जरूरत है? जो काम हम कर सकते हैं। लोग कहते हैं भगवान की इतनी पूजा की, इतनी आराधना की, इतनी सेवा की भगवान की, वो हमारी कोई पूजा आराधना प्रार्थना सुनता नहीं है, जहां के वहीं है। हमने पूछा क्यों आराधना की, क्यों पूजा की, क्यों जप किया, क्यों तप किया, तुम्हारी क्या सुनने चाहिए था भगवान के है? और क्या नहीं सुना? बोले महाराज इतने वर्षों से एक अच्छा मकान मिल जाए करके हमने पूजा किया है, बंबई में एक अच्छा मकान मिल जाए उसके लिए इतने जप किया, इतना तप किया, इतने पूजा की, इतना जप किया, फिर भी भगवान नहीं सुनता। अरे भाई तुम एक मकान के लिए तो तुम खुद ही समर्थ हो, कर लो। संसार के भौतिक पदार्थों के लिए भी भगवान का आश्रय लेना कहां का उचित है भाई? है? भगवान मित्र का काम नहीं है, मित्र का काम यह नहीं है कि तुम कुछ करो उसके लिए और उस कर्म से वो फंस जाए। मित्र का काम है, बोलो तुमने कोई गलती की और वो गलती पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देना कि मैं साक्षी हूं, इसने चोरी किया है, ये मित्र का काम है कि शत्रु का काम है? बोलो है? तुम्हें फिर जेल में फंसाना, रिपोर्ट कर देना, ये मित्र का काम है? वो तो शत्रु का काम है। मित्र का काम क्या है? यदि तुम फंसने की अवस्था में हो तो भी उस सारे अपराध को क्षमा कर देना और तुम्हें फंसने से बचाना, रोकना, ये ना मित्र का काम है। और ये जानते हैं, इसलिए एक महात्मा थे ना, हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज ने एक दृष्टांत दिया। कहते एक गुरु चेला थे, कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, गए और दिन में जब भोजन का समय हुआ तो किसी बड़े घर देख लिया किसी का। गुरु ने कहा कि बेटा ये घर काफी तगड़ा है, बहुत संपन्न है, समृद्ध है, चलो आज की भिक्षा इसी यही घर में जाकर यही मांग लेते हैं। तो दोनों गुरु चले, खड़े हो गए। तब वहां जो चौकीदार था उसने कहा कि साधु भाग जाओ। महाराज जी ने दृष्टांत दिया शिव और नारद जी के माध्यम से। एक बार भगवान शिव और नारद जी साधु का भेष बनाए और चल पड़े। हाँ, और कहा किसी के यहां गए, ये घर बहुत बढ़िया है, यहां भिक्षा खूब मिलेगा। तो वहां गए तो वहां हटा दिया सबने, उधर जाओ उधर जाओ भाग जाओ। महात्मा ने कहा हमको कुछ लेना देने, खाली भिक्षा लेने का है, भूख लगी है, भिक्षा लेनी है। बोले यहां किसी को भिक्षा भिक्षा नहीं मिलता है। महात्मा ने कहा अरे जाकर कह दो कि दो साधु बाहर खड़े हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, उनको भिक्षा दे दो। हमको कोई उसकी सारी संपत्ति वैभव कुछ मांगने थोड़ी आए हैं, उसके कमाई उसके इसमें से कोई हिस्सा लेने थोड़ी आए हैं। हम कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं है, हम साधु हैं, बस थोड़ा सा भूख लगी है। क्षुद्र व्याधिश्च चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षो सदाम गृहताम भुज्यताम। शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को अनेक शिष्य बनाने के बाद उनको सामने रखा और कहा कि हे शिष्यों, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है संसार में, क्योंकि तुम सन्यासी हो गए, परिव्राजक हो गए, अब तुम्हारे लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। अब यदि कदाचित शरीर है तो शरीर के रहने से भूख प्यास तो लगेगा ही, और उस भूख प्यास के निदान करना है, उसके समाधान करनी हो तो क्षुद व्याधिश्च चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। भिक्षा मांग लेना भाई, और जाके नारायण हरि करना, भिक्षा मांग लेना, भिक्षा खा लो, उसी से भूख की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन ख्याल रखना, स्वादु अन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यताम। तुम्हारे जिह्वा को जो स्वाद लगे अच्छा लगे, ऐसे अन्न की याचना नहीं करना। विधिवशात प्रारब्ध से तुमको जो मिले उसी से संतोष कर लेना, क्योंकि प्रारब्ध से जो मिलेगा उससे तुम्हारी भूख प्यास रूपी रोग का निदान हो जाएगा। बस विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यता, इतने करना, इससे ज्यादा नहीं। स्वादु अन्न उन्नति जाते तब हमको हैरान करते हैं भक्त लोग, हमारे हैरान करते हैं। भोजन के लिए कहते महाराज हमारे घर भोजन के लिए आइए। मैंने कहा ठीक है, हमको खाना है, तुमको खिलाना है, तुम्हारा हमारी मित्रता है, हमको खाना है तुमको खिलाना है, हो गया काम, आ जाएंगे। कब आए कैलेंडर में टिक लगाओ। टिक लगाते फिर उसके बाद कहते हैं आप क्या खाओगे लेओ जी। अरे भाई खाना खाएंगे। बोले खाना तो खाओगे, क्या खाओगे, क्या अच्छा लगता है आपको लेओ जी, कौन सी सब्जी बनाए, भोजन में क्या क्या बनाए। हम कहते हैं कि तुमको जो इच्छा हो बनाओ, हम यही कहते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मुझे ये बनाओ, तुमको जो इच्छा हो बना लो बस। हां ना खाने वाली चीज हम बताते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तेल मिर्ची नहीं खाते हैं, बाकी तुमको जो इच्छा हो बना लो। लेकिन शंकराचार्य जी तो ये भी नहीं कहते हो स्वादु अन्नम न तो याचेता। दुनिया को लहसुन प्याज के बिना भोजन अच्छा ही नहीं लगता, देख लो। और हमने कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाए, हमको तो भोजन अच्छा लगता है भाई। और यदि हम भोजन बनाने लग जाएं तुम्हारे घर में, तुम लोगों को रिजेक्ट कर देंगे बिना लहसुन प्याज का। इतना अच्छा भोजन बनाना आता है हमको, तुम लोग आश्चर्य मनाओगे। हम जब अमेरिका जाते हैं ना, वहां हमको भोजन बनाना पड़ता है, क्योंकि बेचारे वहां तो सब काम करने वाले हैं, सुबह 6 बजे उठ के भाग गए। अब या तो उनका बनाया हुआ 7 दिन के बाद से खा के बैठो, क्योंकि सैटरडे संडे पकाते हैं वहां, तो यही नियम है। सैटरडे को खरीदारी करते हैं, संडे को पका के अलमारी माने फ्रिज भर देते हैं, और मंडे टू फ्राइडे खाते रहते हैं। निकाला माइक्रोवेव में गर्म किया, खाया, फिर चल पड़े। या तो फिर वही खाओ, नहीं तो फिर वो उनको तो फुर्सत ही नहीं पका के हमको रोज खिला में। फिर ताजा खानी हो तो फिर अपने पकाना पड़े। तो हमने कहा तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हमको किचन दिखा दो, मिर्ची मसाला कहां है वो दिखा दो, फ्रिज कहां है वो सब दिखा दो, हम अपना पकाएंगे खाएंगे। दिन भर हमको क्या करना वहां अमेरिका की तरफ। फिर प्रवचन खाली 2 दिन होता है, सैटरडे संडे, बाकी 5 दिन खर्रांटे लेकर सो जाओ, अब कोई काम नहीं है। तो फिर क्या करे, तो दिन में अपना पकाते हैं, खूब बढ़िया पका लेते हैं अपनी बुद्धि से, हम मास्टर है वो पकाने में। तो कुछ ज्यादा ही पका देते हैं, हम भी समझते हैं कि जब तक हमें पकाना तो है ही है, थोड़ा ज्यादा पका दो, वो लोग आएंगे तो वो भी ये खा लेंगे, तो कुछ ज्यादा ही पका देते हैं। तो हम खाते हैं फिर रख देते हैं, शाम को जब वो आते हैं खाते हैं तो वाह स्वामी जी, न लहसुन डाला न प्याज डाला, क्या स्वादिष्ट, वाह। ऐसा ही भोजन रोज हमको मिल जाए तो हम सब छोड़ देंगे, लहसुन प्याज मांस मटन सब छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा हमको बनाना आता नहीं, कैसे बनता है। हमने कहा तुम हमारा चेला बन जाओ तो हम पका सिखा देंगे। और स्वादु अन्नम न तो याच्यताम विधि वसात प्राप्ति न संतुष्यताम, देख लो। तब वो भोजन की याचना कर रहे थे महात्मा, तब तक वो घर का मालिक गेट से निकला, बोले क्या बात है। चौकीदारों ने कहा साहब देखो ना ये दो साधु घंटों यहां झकझक कर रहे हैं, इनको जाओ कहा नहीं मानते, हमको खाना चाहिए भोजन चाहिए बोल रहे हैं, जा नहीं रहे। तो उसने आओ देखा ना ताव देखा, धक्का देकर निकालो। बेचारा मालिक की आज्ञा थी, चौकीदारों ने धक्का दिया और निकाल दिया। तब कहते हैं कि वो गुरु जो था उसने, भगवान करे इसकी संपत्ति और दुगने हो जाए, आशीर्वाद दिया और चले और आगे गए। बेचारा एक गांव में गरीब बैठा था, झोपड़ी, एक झोपड़ी में बैठा था। तो वहां जाके नारायण हरि कर ली, उसके यहां कुछ नहीं था खाने पीने का, वो बड़ा श्रद्धालु था। ओहो महात्मा आप लोग आ गए, बैठिए बैठिए। तुरंत पानी लाया, पानी दिया और हाथ पांव धोया। महाराज आप बैठिए, मेरे पास अभी घर में तो कुछ है ही नहीं, एक बूढ़ी गाय पाल रखा है, मैं अभी गाय दूह कर लाता हूं। वो गया गाय को दूह के लेके आ गया, गरम किया, गुड़ डाली और महात्मा को पिलाया। महात्मा प्रसन्न हो गए, वाह क्या सेवा की बेटा, तुम इतनी बड़ी सेवा करते हो, अकेले रहते हो घर में। बोले हां महाराज, पत्नी मर गई, बच्चे कहां है। तो बोले बच्चे अमेरिका गए। तुम अकेले हो। बोले हां अकेले हूं। तो चलो अब हरिद्वार की तरफ, बद्री जाएंगे, केदार जाएंगे, सत्संग करेंगे, कुंभ मेला जाएंगे, चलो तीर्थ यात्रा में। क्या बैठे हो। बोले महाराज एक ही बंधन है, नहीं तो मैं भी आपके पीछे जाता। एक बूढ़ी गाय पाल रखा है जिसका दूध आपने पिया है, अब मैं उसको छोड़ के चले जाऊं, उसको घास पानी कौन करेगा, मैं छोड़ नहीं सकता हूं महाराज। महात्मा उधर चले गए और महात्मा ने कह दिया कि उसकी गाय जल्दी मर जाए। शिष्य को समझ में नहीं आया है, तुम लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा ना, महात्मा पागल है। शिष्य को समझ में नहीं आया तो शिष्य ने पूछा महाराज गुरुदेव ये क्या आपका है, वो इतना वैभव संपत्ति जिसने दुत्कारा एक गिलास पानी तक पीने नहीं दिया, उसको तो आपने कहा कि इसके संपत्ति और दुगुनी हो जाए, चौगुनी हो जाए। और बेचारा इतनी श्रद्धा से उसने गाय का दूध निकाला पिलाया है, और उसको कहते हैं कि गाय मर जाए जल्दी। एक मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बोले बेटा, उसको एक ही गाय बंधन थी और कोई बंधन नहीं था। वो यदि मर जाएगा तो वो तो भजन करेगा, आराम से बद्री केदार तीर्थ यात्रा में जाएगा, खूब सत्संग सुनेगा, खूब भजन करेगा, वो आत्मा कल्याण कर लेगा। वही एक बंधन था, वो बंधन कट गया तो अच्छा तो है ना, और क्या है? क्या उसको मैं फिर फंसाऊं? वो सेठ की जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति इसको प्राप्त हो जाए, मैं दे सकता हूं आशीर्वाद, लेकिन क्या देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कराऊं? बोलो, महात्मा का काम क्या है? किसी की जिंदगी बर्बाद करना महात्मा का काम है? और आप लोग क्या मानते हो? संसार के क्षुद्र वस्तुओं को प्राप्त करना ही ईश्वर की कृपा मानते हो है? संसारी लोग तो इसी को ईश्वर की कृपा मानते हैं ना। महाराज, ईश्वर की बड़ी कृपा है, गाड़ी है, दुकान है, मकान है, पैसा है, घर है, यूं है त्यूं है। अरे भाई, ये ईश्वर की कृपा मानोगे और इसी में संतुष्ट रहोगे, फिर मोक्ष कब मिलेगा तुमको? ईश्वर की कृपा तो यह है कि तुम्हारी वृत्ति भगवान के तरफ कितनी अभिमुख हुई। तब उस शिष्य को समझ में आया कि हाँ महाराज, आपने जो कहा ठीक किया, वो तो विषय में चिंतन में लगा है, इसलिए विषय में फंसा दो। वो यदि संपत्ति सब निकल जाएगा उसका सेठ का, फिर भी भजन करने वाला नहीं, बैठ के रोते ही रहेगा, समझे कि नहीं? हाय मेरा था वो चला गया, हाय मेरा ये था वो चला गया। इसीलिए हमने उसको कहा कि उसकी संपत्ति दुगनी हो जाए, और क्योंकि ये तो बंधन कट गया तो भजन खूब करेगा, खूब भगवान की भक्ति करेगा, सत्संग करेगा। तब शिष्य को समझ में आया ईश्वर की कृपा। नारद जी ने भागवत में कहा कि नहीं, जब उसकी मां मरी तो क्या बोला नारद जी ने? अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठत दिशमुत्तरम। वो इसकी मां ही बंधन थी है? क्योंकि रोज मां उसको लेके जाती थी कहां, महात्मा लोग जहां सत्संग करते थे, और उस नारद जी को तो महात्माओं के बीच में छोड़ देती थी और अपने आश्रम की काम सेवा करती थी, और शाम को हुआ तो फिर उसका हाथ पकड़ा। बच्चा महात्माओं से अलग होना नहीं चाहता था। नारद जी बोलते, मुझे तो संतों के सान्निध्य में रहना बड़ा आनंद आता था, वो लोग दिन भर सत्संग करते थे, मैं दिन भर उनके सत्संग सुनता था, मैं चाहता था कि शाम को भी उनके सान्निध्य में ही रहूं, लेकिन जैसे शाम हुआ वो अपने घर जाने लगती थी तो हाथ पकड़ के खींच लेती थी, मैं नहीं चाहता था, जबरदस्ती लेके चले जाती थी, वही मेरा बंधन था। और जब सुबह हुआ तो मैं चाहता था कब जल्दी चले, कब चले, कब चले संतों के यहां, तो लेके आती थी, फिर मैं महात्माओं के बीच में सत्संग सुनता था और मां काम करती थी, शाम को फिर पकड़ के ले जाए। मेरे लिए वही मुसीबत था, बंधन था, और तो कुछ था नहीं। एक दिन बस प्रातःकाल जल्दी उठकर आए आ रहे थे तो सर्प ने उसको काट लिया और मां मर गई। पहले तो मैं भी जीव होने के कारण थोड़ा मुझे भी दुख हुआ, मैं रोने लगा, लेकिन गांव वाले आए तो तेरी मां अब कभी नहीं उठेगी, मर गई है उस सर्प के कारण, कटने के कारण मर गई है, अब तो तुम्हें जो करना है कर्तव्य करो। बोले क्या करना है? बोले बेटे होने के नाते अब अग्नि संस्कार तुमको करना पड़ेगा। तो गांव वालों ने कहा कि जो झोपड़ी थी उसी झोपड़ी के लकड़ी रुकड़ी तोड़ लिया और उसी में मां का शरीर डाक दिया और आग लगा दिया है। फिर क्या तुमने क्या किया महाराज? बोले अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठ दिशमुत्तरम। भगवान को बड़ा धन्यवाद किया मैंने कि हे परमात्मा, तुम्हारी बड़ी कृपा हो गई, मर गई मां। अब तो क्या किया? प्रातिष्ठ दिशमुत्तरम, उत्तराखंड के तरफ लग गया मैं, क्योंकि महात्माओं ने उत्तराखंड की बड़ी महिमा गाई थी। हाँ, वहां गंगा जी है, सप्तऋषि धारा है, और वहां हिमाल है, केदार है, बद्रीनाथ है, जहां नित्य निरंतर भगवान तपस्या करते हैं। वो संस्कार था तो मैं उत्तराखंड के तरफ लग गया भाई, अनुग्रह मन्यमाना। एक सज्जन आके हमसे कहा कि महाराज कृपा करो। तो हमने उससे पूछा कि कैसी कृपा करे, है? तुम्हें कैसी कृपा चाहिए? नारद की तरह जैसी कृपा चाहिए कि उस सेठ की जैसी कृपा चाहिए, बोलो। तो उसने सोचा, उसने उसको तो समझ में आया नहीं, बोले महाराज हम नहीं समझ रहे कि नारद के प्रति होने वाली कृपा और उस सेठ के प्रति होने वाली कृपा क्या है महाराज। बोले सेठ को जो कृपा किया महात्मा ने, तुम्हारी संपत्ति और 10 गुना हो जाए। ऐसे कृपा करे कि नारद जी ने जो कहा अनुग्रह मन्यमानम प्रातिष्ठ दिशमुत्तरम, एक ही मां बची थी, घर था, घर भी किस काम में आया, मां को जलाने में काम आ गया, खत्म, अब क्या बंधन रहा। तो ऐसी कृपा करे कि वैसी कृपा करे, बोलो। तो समझ में नहीं आया, तो वो तो कहने लगा सेठ की तरह कृपा करो। लेव जी,